राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धामी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धामी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बन चारी। ब्राजगचारी अष्टोत्तरसत्री श्रीमदीश्वरवाहिनी अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रभुस्कोन फाउंडराचार्य श्री भूलवर्ण जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सरकी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौण्यताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। तो आज राधाष्टमी के अवसर पर हम श्रवण करेंगे कुछ विशेष लीला श्रीमती राधा रानी से जो संबंधित है, और कुछ ऐसी घटना जो कि सामान्य रूप से लोग नहीं जानते हैं। भगवान कृष्ण ने जब तो भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा आते हैं, मथुरा से फिर द्वारका आते हैं और द्वारका में महाराज उग्रसेन का अश्वमेध यज्ञ होता है। उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे अनिरुद्ध जी चलते हैं यादवों की सेना के साथ, और वो घोड़ा अनेक अनेक स्थानों में जाता है और अनेक अनेक राजा उस घोड़े को पकड़ते हैं, और अनिरुद्ध जी युद्ध करके उन राजाओं पर विजय प्राप्त करते हैं और घोड़े को फिर छीनते हैं। इस प्रकार से घोड़ा अपनी इच्छा से विचरण करता हुआ ब्रजमंडल में पहुंचता है, और नंद महाराज जो है उस घोड़े को जब देखते हैं, उसके माथे में जो पत्र लिखा हुआ है उसको जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस घोड़े के साथ तो भगवान कृष्ण भी हैं। तो उस घोड़े को आदर पूर्वक पकड़ के बांध लेते हैं और इंतजार करते हैं कि अब कृष्ण और उनकी सेना यहाँ आएगी और कृष्ण का दर्शन होगा। तो फिर कृष्ण जो है सब यादवों की सेना के साथ ब्रजमंडल में पहुँचते हैं और कृष्ण का स्वागत होता है और नंद महाराज और यशोदा कृष्ण का दर्शन करते हैं। नंद के महल में कृष्ण ठहरते हैं सब यदुवंशियों के साथ और अब राधा कृष्ण का मिलन हुआ 100 साल के बाद। तो अब सायंकाल की घटना है। सायंकाल के समय राधा रानी ने कृष्ण जी को बुलवाया। कहां पर बुलाया? राधा रानी कहां रहती हैं? एक शीतल कदली वन में रहती हैं। तो राधा रानी ने बुलवाया कृष्ण को और कृष्ण राधा के पास गए। आहुतो राधया कृष्णाम संध्यायाम नंद नंदन जगाम सस्वधेकांते शीतलम कदली वलम। उस कदली वन में केले के पत्तों का एक घर बना हुआ था। आप सुनिए ध्यान से, राधा रानी कृष्ण के वियोग में 100 साल कैसे बिताती है? केले के पत्तों का एक घर बना हुआ है, उसमें चंदन का छिड़काव किया गया है, चारों ओर जल के कण झर रहे थे और यमुना जल से मिश्रित पवन के झोंके चल रहे थे उस कदली वन में। रंभा दले चंदन से पंक्तियुक्तम मनोहरम स्फुरास्फुरन अभ्रगेहम यमुना वायु शीकरम। ऐसा सुंदर राधा का मेघ मंदिर था। मेघ मंदिर समझते हैं? मेघ जिसमें पानी की वर्षा करते रहे, पानी की बूंदें गिरती रहे शीतल करने के लिए, तो वो मेघ मंदिर था राधा रानी का। किंतु श्री कृष्ण के विरह के दुख की अग्नि से वो सारा भस्मीभूत प्रतीत होता था। इतनी ठंडक, लेकिन वो कैसा जल रहा है मानो। क्यों? राधा रानी की विरह की अग्नि से वो पूरा जल रहा है। इतनी पानी की फुहारें पड़ रही हैं, लेकिन तो भी कैसा लग रहा है कि एकदम जैसे जला हुआ जैसा मालूम पड़ता है। एतादृशं राधिकाया सुंदरम मेघ मंदिरम सर्वं दुखाग्निना नित्यं भस्मीभूतं बभूवः। वृषभानु नंदिनी राधा उसी मेघ मंदिर में श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई श्री दामा के साप से अपने शरीर की रक्षा कर रही थी। कृष्ण आएंगे इस कारण से अपने जीवन की रक्षा कर रही हैं राधा रानी, इस आशा में कि कृष्ण का आगमन होगा। श्री दाम सापे नृप दुखे न वृषभानु जाम तनुम रक्षति तत्रापि कृष्णागमने हेतवे। जब राधा ने सखियों से सुना कि श्री कृष्ण आ गए हैं, कहा कदली वन में, तो आसन से उठ पड़ी और सखियों को साथ लेकर शीघ्र उनका स्वागत करने के लिए मंदिर के द्वार पर आई। निसम्य कृष्ण स्वने समागतम सखी मुखा श्री वृषभानु नंदिनी आने तुम उत्थाए वरासनात्वरम द्वारे सखी भिन्न वृषा जगाम। तत्काल ब्रजेश्वरी राधा ने उन्हें आसन पर बिठाया और कुशल क्षेम पूछा, पूजन किया कृष्ण का और कुशल क्षेम पूछा। परिपूर्णतम श्री कृष्ण को देखकर परिपूर्णतमा राधा ने अपनी विरह व्यथा दूर की और उनके समागम से निहाल हो गई। तदोह्या समय पाद्याद्यां उपचारान ब्रजेश्वरी वदंती कुशलम वाक्यम कृष्णा कृष्णम ब्रजेश्वरम। परिपूर्णतमं दृष्ट्वा परिपूर्णतमान् जवो विरहजं दुःखं संयोगे हर्षपूरितां। फिर राधा रानी ने श्रृंगार किया। देखो 100 साल के बाद श्रृंगार किया राधा रानी ने। 100 साल तक कृष्ण के विरह में श्रृंगार नहीं किया था, विविध वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार किया, क्योंकि जब भगवान मथुरा से द्वारका गए थे तब से उन्होंने सभी श्रृंगार त्याग दिए थे। चकार तस्या श्रृंगारम वस्त्रालंकार चंदन कुशस्थल्याम गते नाथे श्रृंगारो ना कृतस्तयाम। जब श्री कृष्ण मथुरा गए, जिस दिन से श्री कृष्ण मथुरा गए उस दिन से राधा ने क्या नहीं किया, पान नहीं खाया ना मिष्टान्न का भोजन किया, समझ रहे, मिठाई राधा रानी ने मिष्टान्न भोजन नहीं किया, ना कभी सैया पर सोई है, और तब से कभी हंसी भी नहीं। देखो ये है पतिव्रता। पुरातया न भुक्तम चा ताम्बूलम मिष्ट भोजनम कृतम न सैया शयनम कुचिन्हास्यम न वा कृतम। इस समय सिंहासन पर विराजमान मदन मोहन श्री कृष्ण को देखकर हर्ष के आंसू बहाती हुई राधा गदगद वाणी में बोली। राधा ने कहा, हे ऋषिकेश, गोकुल और मथुरा त्याग कर आप द्वारका क्यों चले गए, ये मुझे बतलाइए। आप तो साक्षात गोकुलेश्वर हैं ना, आपको गोकुलेश्वर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गोकुलेश्वर, तो आपने गोकुल छोड़ करके द्वारका क्यों गए। सिंहासने स्थितं राधा देवं मदन मोहनम हर्ताश्रोणी समुच्चन्ति जगो गंगदया गिरां गोकुलं मथुरां त्यक्त्वा गता कस्मात् कुतस्थली मद तन्मे ऋषिकेश त्वं साक्षां गोकुलेश्वरां। अब देखो राधा रानी क्या कहती हैं, हे नाथ, आपके वियोग में मेरा एक क्षण कैसा लगता है, युग के समान। आपके वियोग में एक क्षण कैसा लगता है, युग के समान। एक घड़ी मनमंतर के समान लगती है, एक घड़ी यानी 24 मिनट मनमंतर के समान 30 करोड़ साल लगता है, है? और दिन द्विपरार्ध जैसा लगता है, एक दिन द्विपरार्ध ब्रह्मा की आयु जैसा लगता है, है? 31 नील और 10 खरब 40 अरब वर्ष, एक दिन इतना बड़ा लगता है। हाय, किस कुसमय में मुझे आपका दुखदायी वियोग प्राप्त हुआ था, जिसके कारण मुझे आपके सुखदायक चरणों का दर्शन नहीं मिला। क्षणम योगे समम नाथ है जानामी तन्वियोगतः घटी मन्वंतर समाम द्विपरार्ध समम दिनम कस्मिन् कुकाले विरहोमि अभूवाच दुःखदः येन त्वच्चरणौ देव न पश्यामि सुखप्रदम्। जैसे श्री राम को सीता और मान सरोवर की हंसनी हंस को चाहती है, उसी प्रकार आप राशेश्वर को मैं चाहती हूँ। यथा रामं तु सीतेव मानसं वरते वचाम तथा राशेश्वरं त्वां तु मानदं एतमुत्सहे। आप सर्वज्ञ हो, अतएव सब कुछ जानते हो, तब मैं अपना दुख आपको कैसे बताऊं। हे नाथ, 100 वर्ष बीत गए पर मेरा वियोग दुख दूर नहीं हुआ। सर्वं जानाति सर्वज्ञ किं दुःखं कथयाम्यहम् सत्वर्षं गतं नाथ वियोगो न गतो मम। अपने स्वामी श्री कृष्ण से ये कहकर वियोग के दुख में डूबी हुई ब्रज स्वामिनी राधा बीते दुखों का स्मरण करके रोने लगी। इत्युक्त्वा वचनं राजन् स्वामिनी स्वामिनं परम् वियोग खिन्ना दुखानि स्मरन्ति सारोरोदः। अपनी प्रीतमा राधा को रोती देख भगवान प्रिय वचन बोले। ऐसा करके वे राधा के दुख को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, इस प्रकार शरीर सुखाने वाला शोक तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऋषि लोग जानते हैं कि हमारा और तुम्हारा तेज
एकाकार होकर के दो रूपों में दृष्टिगोचर होता है, वास्तव में दो है नहीं। दृष्ट्वा प्रियां मृदन्ती ताम प्रिया प्राह प्रियं वच तस्याश्च समयन वाक्य कृष्णा कस्मन् मे विच न कर्तव्यं त्वया राधे शोकच्चां तनु शोचकम् तेजश्चैकं दधा भूतम् आवयो ऋषियो विदुः। हे प्रिय, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ही तुम भी रहती हो। जैसे प्रकृति और पुरुष का वियोग नहीं होता, वैसे ही मेरा और तुम्हारा वियोग कभी नहीं होता। जो नराधम हम दोनों में भेद देखते हैं, वे अपने इस दोष से शरीर त्यागने पर नरक में जाते हैं। अब से तुम मुझे सदा अपने पास ही देखोगी। जैसे प्रातः काल के समय चकवी अपने प्यारे चकवे को अपने पास देखती है, हे प्रिय, कुछ ही समय बाद तुम्हें तथा गोपों और गोपियों को अपने साथ लेकर मैं अक्षर ब्रह्म स्थान गोलोक धाम चला जाऊंगा। किंचिन कालेन दैते गोप गोपी भिरे साकम त्वयाक्षरम ब्रह्म श्री गोलोकम व्रजाम्यहम्। श्री कृष्ण के वचन सुनकर गोपियों के साथ राधा बहुत प्रसन्न हुई और भगवान का इस प्रकार पूजन किया जैसे लक्ष्मी जी विष्णु भगवान का पूजन करती है। बाद में राधा ने रास लीला करने के लिए अनुरोध किया। देखा ये रास लीला, तो भगवान भी वृंदावन में रास रचाने के लिए राजी हो गए। माधवस्य वचः श्रुत्वा गोपी भी सह राधिका प्रसन्ना पूजया मातः रमेशं च रमयथां श्री राधया पुनः कृष्णो रासार्थं प्रार्थितो नृप प्रसन्नो वृंदकारण्ये रासं कर्तुं मनोदधे। अब गर्ग जी राजा को सुना रहे, राजा प्रतिबाहु को सुना रहे हैं कथा। हे राजन, हेमंत ऋतु के प्रथम मास यानी कार्तिक की पूर्णिमा को राधिकेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी लोक बस करी, बंसी बजाई। उसी प्रकार इस समय भी उन्होंने अपनी बंसी बजाई। जैसे पहले हेमंत के प्रथम महीने में बंसी बजाई थी, उसी प्रकार बंसी बजाई। हेमंते मासि पूर्वस्मिन् राकायां राधिकेश्वर बंसी बस करी दधमाओ यथा वृंदावने पुरा। सबका मन हरण करने वाली बंसी की ध्वनि सुनकर गोपियां काम के आवेग से त्रस्त हो उठी। उस बंसी की ध्वनि से समुद्र का वेग रुक गया। बंसी का देखो कमाल क्या है, समुद्र का वेग रुक गया। आकाश में विविध चमत्कार दिखने लगे। सनक आदि मुनियों का ध्यान भंग हो गया। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ी उत्कंठा से नाना प्रकार की पूजा देने वाले राजा बलि चंचल हो गए और शेष नाग कांपने लगे। इस प्रकार जैसे समस्त ब्रह्मांड कटाह को वह बंसी ध्वनि छिन्न भिन्न करने लगी। झुनर्बभूवत सर्वेतां महरन मनः निसम्य गोपा संखिन्ना काम खेदेन तत्प्रसुः रुन्धन्नम् उभृतश्च मत्कृतिपरम् कुर्वन् मोहस्त्वम्बरम् ध्यानांगत नयनं च नंदन मुखान् विस्मेरयन् वेधसम् औत्सुक्यान् बलिभिर्बलुम् चटिलयन् भोगेन्द्रमागुर्णयन् भिन्नंदन्य कटाय भीतिम अभितो बंभ्रामे बंसी ध्वनि। इसी समय चंद्रमा का उदय हुआ और उसी अवसर पर यमुना ने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार वृंदावन गोवर्धन और समस्त ब्रज भूमि ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उस समय उच्च कोटि के मणियों मोती माणिक हीरा और पन्ना जटित परकोटों और वैदूर्य नीलमणि हीरे और पन्ना की सीढ़ियों वाले मणि मंडपों से जगमगाती हुई यमुना बहुत ही सुंदर लग रही थी। कृष्णा नदी जयति यत्र मणीन्द्र मुक्ता माणिक्य सुम्र हरिता करतोलिका भी वैदूर्य नीलक हरिम हरिवंद्र पीतम सोपान मंडपयुता विरविस्फुरंती। स्वेच्छा से उछलते मत्स्यों से संपन्न ऊंची ऊंची चंदल तरंगों और विविध प्रकार के कमलों से भरी पूरी अपने श्यामल शरीर से पापी प्राणियों के पाप हरती हुई यमुना मंथर गति से बह रही थी। स्वच्छंद सुस्पतित मत्स्य गण वहंती सच्यामलेन पुतांग गणम हरंती उत्तुंग लोल लहरी कमलेर लसंती कृष्णा नयति जियति कृष्ण गृहे लुठंती। अब गोवर्धन पर्वत कैसा है? उस गोवर्धन पर्वत का भजन करो जिस पर 100 चंद्रमा का प्रकाश विद्यमान है, जहां मंदार चंदन और कल्प वृक्षों के जंगल हैं, जहां मणि मंडपों से अलंकृत अनेक रास मंडल हैं और जहां निकुंज कुटियों विद्यमान हैं। गोवर्धन भज गिरिम सतचंद्र युक्तम मंदार चंदन लतामृत कल्प वृक्षम श्रीरास मंडल युतम मणिमंडपाढ़्यम कोटीर मंजुल निकुंज कुटीर कोटिम। यमुना जी के तट पर जल से सटा शीतल मंद सुगंध युक्त वायु और चंदन केसर के पंख से अनुलिप्त होने से सारा प्रदेश परम सुगंधित हो गया। ऐसा वृंदावन धन्य है। वृंदावनम च यमुना तट नीर तीर संवृत्त मंद गमने प्रति गंध वाते तत्कंपितम तसुरभि कृत सर्वदेशम श्रीखंड कुंकुम मृदा गुरु चर्चितम तम। जहां बसंत कालीन नव पल्लवों और पुष्पों से मंदार चंदन चंपा कदंब नीम आमड़ा आम कटहर नारंगी ताल पीपल बट नारियल खजूर बेल लौंग अंजीर साल तमाल कदंब कल्प वृक्ष कुंदबेर केला सेमर मौलश्री केतकी तथा सिरस वृक्षों से संपन्न वृंदावन था। जुष्टम बसंत नव पल्लव पुष्प रंग मंदार चंदन सुचंपक नीप निम्ब आम्रात काम्रपनसा गुरु नाग रंग श्रीताल पिप्पल बटैर नव नारी केल खरजूर श्रीफल लवंग विराजमान मंजीर साल कतमाल कदम युक्तम संतान कुंद बदरी कदली चाट्यम श्री साल मली बकुल केत केतके सच्छरीशम। इसके बाद निकुंज कैसा है? वृंदावन में निकुंज कैसा है? उसमें पुखराज मणि से निर्मित शिखरों वाला एक निकुंज भवन है, जिसमें कौस्तुभ मणि और इंद्रनील मणि की पच्ची कारी की गई है। वो करोड़ों चंद्र मंडल के सदस्य चंदुओं सुनहले काम के वस्त्रों और मणि जटित तोरणों से सदा अलंकृत रहता है। श्रीपद मैराग शिखरम च निकुंज गेहम श्री कौस्तभेन्द्र मणिराज विराजमानम कोटिंदु मंडल विताल गण सहम श्रीपट्ट सूत्र रति सैर मणितोरणाढ़्यम। मोतियों के झालरों युक्त सोने की पीली पताकाएं वहां सदा फहराती रहती हैं। अनेक जाति के कबूतर और हंस जैसे श्वेत पक्षी जहां सदा विद्यमान रहते हैं। मंदार कुंद करीर जूही और नवीन चंपा की माला से वह सदा अलंकृत रहता है। मुक्ता व्रत कनक पीत पतत पताके पारावत सत पतत्र धीरावृतम चा मंदार कुंद कर वीर कयूथिका नाम माला विचित रचितम नव पंकचानाम। उस निकुंज भवन में जाकर भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बंसी बजाई तब समस्त ब्रज बालाएं वह वेणुगीत सुनते ही सारा काम काज छोड़कर दौड़ पड़ी, क्योंकि बंसी की मधुर ध्वनि सुनाकर श्री कृष्ण ने उनका मन हर लिया था। श्री वेणुगीतम बहु काम वरधनम निशम्य सर्वा गज जोषितो नृप श्री कृष्ण कांतेन गृहीत मानसा विसृज्य कर्माणि समययुर्वने। उनमें से जिन गोपियों ने उनके पतियों जिन गोपियों को उनके पतियों ने रोक लिया था, ये अपना स्थूल शरीर पतियों के पास छोड़कर सूक्ष्म देह से अति शीघ्र श्री कृष्ण के पास दौड़ आई। सुनहले काम के वस्त्र जिस पर बिछे थे उस सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण तथा सुंदरी राधिका के गले में मालती की माला सोह रही थी। रुद्धाया पतिभि राजन कृष्णेन हृत मानसा स्थूलम शरीरम तां त्यक्त्वा त्वरं कृष्णान्तिकं ययुम् सिंहासने हेम दुकूल संयुति मध्यस्थितं सुंदर नंद नंदनम श्री सुंदरी राधिकया समं परम गले दधानम मधुमालती ब्रजम। उस समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रातः काल के सूर्य के समान चमकीला मुकुट पहने हुए थे। उनकी कांति चारों ओर फैल रही थी। उनकी मुरली उनके हाथ में विराज रही थी। वे मनोहर पीतांबर पहने हुए अपने अपार सौंदर्य से असीमित कामदेवों का मन मत रहे थे। ऐसे भगवान को ब्रज सुंदरियों ने देखा। श्यामं प्रभातार्क किरीटिनं हरिं स्फुरत प्रभं त्रिमुरली मनोहरम् पीतांबरम मन्मथ राशि मोहनम ब्रजस्त्रिय स्तंभो समागत। भगवान के कुंडल कैसे हैं? मत्स्य की आकृति के हैं, मछली की आकृति के कुंडल हैं। ब्रजवालाएं उनको देख करके मूर्छित हो गईं। जब भगवान ने मीठी वाणी से उन्हें सांत्वना दी तब वे होश में आईं। तब गोपियों ने गदगद वाणी से उनकी स्तुति की और अपना वियोग जने दुख दूर करके उन्होंने अपने प्रिय गोविंद को देखा। दृष्टा प्रिया प्रियतमम मत्स्य कुंडलिनम हरिम गोप्यो मूर्छाम गता संद्यो भूये चालक्षितोद्यमाम सांत्वयामास ता कृष्णो मिष्टिमा के सुधा समय तदा गोप्यो वनो देशे सर्वा चैतन्यताम गताम। मंद मंद हंसते हुए प्रभु वहां से चलकर यमुना के तट पर पधारे। मालती वन से व्याप्त वृंदावन में भ्रमर गुंजार कर रहे थे। वहां भगवान मदन मोहन अपने कर कमल से राधा का कर कमल पकड़कर धीरे धीरे बिचरने लगे और यमुना के तट पर आए, फिर तटवर्ती निकुंज में आ गए। विचार हरे साक्षात देवो मदन मोहन पद्माभम पद्महस्तेन गृहीत्वा राधिका करम प्रसन्न भगवान साक्षात आयो यमुना तटम कृष्णा तीरे निकुंजे वे श्री कृष्णो निज साधह। उस निकुंज में श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण और नूपुरों की झंकार और कंकणों की रुंझुन करती और रत्नमयी करधनी कमर में पहने गोपियों के कुछ भेद बता रहा हूं, इनको सुनो। तस्मिन् गृहे मधुपते श्रृणु गोपिकानां श्री कृष्ण चंद्र चरण स्मरणामृतानां झंकार नूपुर झणत कर कंकणानां मंजीरे रत्न विलचन कड़ी कटि किंकिणीनां। मंद मंद हास्य के साथ चमकते हुए कपोलों और शोभा से युक्त दंत पंक्ति से शोभित बिजली के समान सखियों के बेसों और सुवर्ण के हार एवं बाजू बंद से भूषित प्रातःकालीन सूर्य के समान कुंडलों से विभूषित उन गोपियों में से कुछ गोपियां मुग्धा थीं, कुछ तरुणी और कुछ मध्या थीं। उनमें से कोई सखी वृक्ष को झुका रही थी, कोई हंस रही थी और कोई मदमत्ता सखी वन में विचर रही थी। इसमें ज्योति स्फुट चमत्कृत गण देश श्रीदंध पंक्ति विलसन तड़िता निलेश कोटीर हार हरिताम गदभूषिता नाम बालार्घ्य मंडल विकुंडल मंडिता नाम तासाम दुकापि युवती कथिता च मुग्धा मंद्यापिकापि तरुणी रुचिरा प्रगल्भा काचित् तरुं विनयति मधुरं हसन्ति काचित् सखी मदयुता सुवने व्रजन्ति।
तभी कोई सखी किसी अन्य सखी को एक धौल जमाकर भागी, कोई जल में स्नान करती हुई सखी को पकड़कर कमल पुष्प से मारने लगी, किसी ने किसी सखी के ढीले हार को ले लिया, कोई सखी बिहार में मग्न रहने के कारण अपने उलझे बालों को भी सुलझा रही थी।
संताड्यतामपि कर्ण दुकापि धावन संग्रह कापि भुवने कमलेर जगान काचिन प्रथम कनक हारे मुपाज हारे काचित प्रमुक्त कबरे तो विहारे मत्ता।
आगे बहुत से युद्धों का वर्णन हुआ है। अब कुछ गोपियां श्री कृष्ण का रूप धारण करके नाच रही हैं, समझिए श्री कृष्ण का ही रूप धारण कर लिया है और नाच रही हैं गोपियां। कुछ गोपियां वीणा, कुछ मधुर ताल और मृदंग लिए हैं, कुछ सखियों ने श्रृंगार करके बाजू बंद पहन रखा है, श्री राधिका हाथ में बंसी लिए हैं, कुछ सखियां हाथ में मणि जटित बेत्र लिए हैं।
नृत्यन्ति तत्र हरि वेश धरा सुकाचिन वीणा करा मधुर ताल मृदंग हस्ता बंसी धरा से वृषवान सुता सुवेता केयूर कुंडल युता मणि बेत्र हस्ता।
यमुना तटवर्ती उस निकुंज भवन में विहार करके श्याम सुंदर बंसी बट्ट होते हुए श्री राधा के साथ कहां पर आए, गोवर्धन पर्वत पर जाकर विचरने लगे। उस समय वे नटवर वेश धारण किए हुए थे। ऐसे नंद नंदन का स्मरण करिए।
तस्मिन् निकुंज भवने यमुना तटेपि बंसी बटे वन धरा निकटे हरिं तम श्री राधयात गिरिराज तटम व्रजंतम नन्दात्मजम च नटवेश धरम स्मर त्वम।
जिन चरण कमलों के नख पुखराज मणि के समान देदीप्यमान हैं, जिनसे नूपुरों की झंकार निकल रही है और जिनके प्रत्येक अंग फड़क रहे हैं, उन श्री चरणों से भूमि भाग को लाल करते हुए वे इधर उधर विचरने लगे।
श्री पद्म राग नख दीप्ति पदार बिंदम झंकार अनु